ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ओके, हम लोग पढ़ रहे नारद भक्ति सूत्र एंड मैं पहले श्लोक से पढ़ रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हैं इसमें। ओके, नारद भक्ति सूत्र, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये नारद मुनि ने लिखा है, और एक और भक्ति सूत्र है शांडिल्य भक्ति सूत्र, जो कि इस्कॉन में ट्रांसलेटेड नहीं है, बट काफ़ी आचार्य उसको कोट करते हैं। और भक्ति की में एक अथॉरिटेटिव बुक है वो। सुनारद मुनि कह रहे हैं अथातो भक्तिम व्याख्या श्याम, कि अब मैं भक्ति की व्याख्या करूँगा। सो वेल, प्रभुपाद इस पॉपअप में लिख रहे हैं कि इसका मतलब है कि भक्ति की व्याख्या कर सकते हो आप, मतलब अनलाइक जो आजकल के जो न्यू एज सेंट्स हैं, अब उनसे पूछो भक्ति क्या है, कि भक्ति भक्ति तो बस अनुभव करने की चीज़ है, ऐसा कहते नहीं कहते जो मिस्टिक्स हैं, स्पिरिचुअलिस्ट है। मगर नारद मुनि कह रहे हैं सिर्फ इतना नहीं है, भक्ति को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और श्रील प्रभुपाद अपने पॉपअप में लिख रहे हैं अथातो भक्ति व्याख्या से, अब इसलिए मैं भक्ति को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भक्ति एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन के लिए है। सुनारद मुनि कह रहे हैं कि अब तुमने अपनी आत्मा को अनुभव कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें भक्ति के बारे में समझा रहा हूँ। सो भक्ति का ज्ञान उसी को समझ आएगा जिसको ये समझ आ गया कि वो शरीर नहीं आत्मा है, वरना पूरी तरह समझना इस नॉलेज को बहुत मुश्किल है। फर्स्ट स्टेप वो है, अगर वही समझ नहीं आया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो भक्ति का नॉलेज समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं वो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोषित न कांक्षति। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं ओनली व्हेन अ पर्सन इज परफेक्टली सिचुएटेड इन रियलाइजेशन दैट इज नॉट द बॉडी बट अ स्पिरिट सोल कैन ही बिगिन द प्रोसेस ऑफ भक्ति। इमेजिन, जिसको पूरी तरह पता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, वो एक्चुअली भक्ति शुरू कर सकता है, उससे पहले रियल भक्ति शुरू ही नहीं होती। सो क्या करें, मतलब हम क्या कर रहे हैं फिर, हमें तो नहीं पता कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है पूरी तरह, हम सेल्फ लाइफ सेंट तो नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं। सो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो हम एक्चुअली रियल भक्ति को इमिटेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं हम इमिटेट कर रहे हैं, या प्रैक्टिस भक्ति है हमारी, रियल भक्ति नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे कहते हैं कि घी जीवन है, इसका मतलब ये नहीं कि घी जीवन है, मतलब घी खाने से आपका जीवन, आप हेल्दी रह सकते हो, घी अपने में कुछ नहीं है, घी इज अ डेड थिंग। सो उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रियली में भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जिससे हम रियल भक्ति के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए। सो इट शुड नॉट बी, हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए कि मैं डिवोशन कर रहा हूँ, हम रियल डिवोशन प्लेटफॉर्म के आसपास भी नहीं फटक रहे हैं। ठीक है, अब भगवान ने कृपा करके हमें एक प्रोसेस दे दिया है कि हम रियल डिवोशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएं, वो तो भगवान की कृपा है, वरना तो पहले ज़माने में तो लोग कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग तक पहुँचते थे। पहले आत्मा के स्तर पे आके फिर वहां पे पहुंचते थे। सुनारद मुनि कह रहे हैं ठीक है, अब मैं आपको भक्ति के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि उस भक्ति तक पहुंचना कैसे। सो शास्त्रों में भी लिखा है भक्ति तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है, भक्ति। और कोई तरीका ही नहीं है। भक्ति संचायत है, भक्ति, भक्ति से ही भक्ति आती है। सो हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा प्रोसेस है कि जिनमें भक्ति है उनके पास रहो, तो आप में भक्ति आ जाएगी। नहीं तो भक्ति का प्रोसेस क्या है? भक्तों का संकरण, यही है ना। सो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हमारी जो प्रैक्टिस है अभी वो है कि हम भक्ति के पास रह रहे हैं, कि जैसे एक दिन हमें भी कंटेजियस होके हमारे में भक्ति आ जाएगी। बस उसको कहते हैं संबंध। संबंध मतलब होता है किसी के पास रहना, है नहीं, यही है ना। ये हम भगवान के पास रहते हैं, ऑल्टर में पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं, यानी कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं बस चीज़ों के। सो अगर आप आग के पास रहोगे तो पहले थोड़ी गर्मी आएगी, फिर बैठे रहो तो थोड़ा सा और गर्म होगे, फिर बैठे रहोगे तो
जल जाओगे
तब आप भी आग बन जाओगे थोड़े टाइम बाद, दैट्स ऑल। नहीं सो यही तरीका है। प्रभुपाद ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉपर्ट में। सो नारद मुनि दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, परफेक्ट भक्ति और प्रैक्टिस भक्ति। प्रैक्टिस भक्ति मतलब उस रियल भक्ति तक पहुँचे कैसे। मगर उससे पहले नारद मुनि परफेक्ट भक्ति की बात कर रहे हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। एक्चुअली भक्ति क्या है? भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना है। प्रेम से नीचे कुछ भी नहीं, कोई भक्ति नहीं होती वो, दैट्स ऑल। उसको भक्ति नहीं कहते, उसको आप तरीका कह दो वहां तक पहुंचने के लिए, बट एक्चुअली नहीं है। प्रेम, स्नेह, रति, ये सारे शब्द आते हैं शास्त्रों में। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रभुपाद एक्चुअली तो वही कोट कर रहे हैं श्लोक। ओके, और नारद मुनि कह रहे हैं अमृत स्वरूप च। भक्ति प्रेम रूप है और भक्ति भक्ति अमृत रूप भी है। अब इसका इसका मतलब क्या है, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भक्ति करने का फल क्या है, नारद मुनि बता रहे हैं। जो भगवान से प्रेम करेगा फल क्या है, अमृत स्वरूप च, उसको अमृत की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि उसको अपना स्वरूप पता लग जाएगा। भक्ति का फल प्रेम जब मिल जाएगा तो क्या होगा, तो हमें अपना स्वरूप और भगवान दोनों का स्वरूप समझ आ जाएगा। श्रीमद् भागवत में मुक्ति की परिभाषा ही है, किसी को पता है क्या परिभाषा है? मुक्तिर हितवान अन्यथा स्वरूप है नवस्थिति। मुक्ति का मतलब ये है कि आप इस अपने इस स्वरूप से जो हमारा अभी बॉडी फॉर्म है इसको भूल के हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में एस्टैब्लिश हो जाए, मुक्ति का मतलब ही है। सो प्रेम जब मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें अपना स्वरूप पता लग जाएगा। तो एग्जांपल देते हैं, जैसे जब सूर्य उदय हो जाएगा तो अपने आप को दिखाई दे जाएगा कि दूसरा व्यक्ति कौन है, मैं कौन हूँ, जब तक सूर्य उदय नहीं अंधेरा है। सो इसी प्रकार जब कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य उदय हो जाएगा हृदय में, तो अपने आप दिखाई दे जाएगा कि एक्चुअली मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है और हमारा संबंध क्या है। उससे पहले आप कुछ भी करते रहो नहीं दिखाई देगा। इसलिए जितने भी प्रोसेस हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, वो उसी प्रकार है जिस प्रकार आप अंधेरे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। वो सारे योग अंधेरे में आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मैं कौन हूं, पता लगेगा कभी? अंधेरे में तो अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। तो ये जितने भी, इसलिए भागवत और भगवत गीता रिजेक्ट कर रहे हैं, नारद मुनि रिजेक्ट कर रहे हैं। इन योग से आप कभी नहीं पता लगा पाओगे कि आपका स्वरूप क्या है, केवल भक्ति से पता लग जाएगा अपने आप कि हम कौन है और भगवान कौन है। इनफैक्ट भक्तिमय ठाकुर ने सॉन्ग भी लिखा है, कौन सा सॉन्ग है, उल्लास सॉन्ग शरणागति का, हरि नाम या कृष्ण नाम धरे का तो बल, ये कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, जो कृष्ण नाम लेगा, कृष्ण नाम उसको धीरे धीरे प्रेम प्रदान कर देगा भगवान से। और जब प्रेम आ जाएगा तो उस प्रेम के प्रभाव से भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे, भगवान का स्वरूप पता लगेगा पहले। और जब भगवान का स्वरूप पता लग जाएगा तो भगवान की प्रेजेंस में और उनकी ज्योति से हमें अपना स्वरूप पता लग जाएगा। भक्ति ठाकुर ने बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है, स्लोली स्लोली सब कुछ रिवील हो जाएगा। नारद मुनि भी लिख रहे हैं, अमृत स्वरूप च यल लब्धवा पुमान सिद्धो भवति। भक्ति प्राप्त करके डिवोटी सिद्ध हो जाता है। सिद्ध मतलब क्या है? प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, परफेक्ट तो चलो पता ही है, बट यहाँ पे सिद्ध का मतलब है कि यहाँ पे सिद्ध का मतलब है कि अपने अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाएगा, स्वरूप सिद्धि। यहाँ पे अष्ट सिद्धियों की बात नहीं कर रहे, स्वरूप सिद्धि हो गई उसको। और अमृत भवति इटर्नल हो गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परे हो गया। तृप्तो भवति और परम संतुष्ट हो गया, परम शांत शांति प्राप्त हो गई। सो ये भक्ति के तीन इफेक्ट बता रहे हैं, सिद्धो भक्ति, अमृत भक्ति, तृप्तो भक्ति। मगर ये सारी चीजें कब होगा? एक्चुअली प्रेम के प्लेटफॉर्म पे होगा। उससे पहले क्या हमारे को शांति नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्या हमें ये अनुभव नहीं होगा कि मैं जन्म मृत्यु के परे हूँ? थोड़ा बहुत अनुभव आने लगेगा। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये सारे जो प्रभाव हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल प्रेम मिलने के बाद प्राप्त होते हैं, भक्ति की शुरुआत में भी ये इफेक्ट्स आने लगते हैं। ये रूपा गोस्वामी का क्या एनालिसिस है। सारे भक्ति शास्त्र कह रहे हैं कि भक्ति की शुरुआत में ही भगवान तृप्ति और अमृत की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, ये धीरे धीरे साधक को देने लगते हैं अपनी कृपा से। वैसे तो प्रेम मिलने के बाद प्राप्ति होती है, मगर साधक को भी भगवान देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे वो नहीं होता है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। तो एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है? क्योंकि इससे मैं अट्रैक्ट हूं। सो ऐसे ही भगवान भी हमें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपनी कृपा से हमें शुरू से ही क्लेश आग्नि शुभधा, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, शुरू से ही आपके क्लेश नष्ट होने लगेंगे। शुरू से ही हमारे जीवन में शुभ और तृप्ति और संतुष्टि अनुभव होने लगेगी। ऐसे नहीं है कि अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं और फिर उसके बाद अनुभव हो रहा है। वो ज्ञान योग ध्यान योग प्रोसेस में होता है। ज्ञान योग ध्यान योग में शुरू में बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। आरु या कृच्छे ना परम पतन तथा, बहुत तपस्या है, बहुत क्लेश है, और उसके बाद फिर मिलने के बाद जब परफेक्शन होगी तब आनंद की अनुभूति होगी। भक्ति में ऐसा नहीं है। सो क्योंकि भक्ति में क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि भक्ति में हमारे साथ कौन है? भगवान है। ध्यान योग ज्ञान योग के साथ भगवान नहीं है, वो खुद चल रहे हैं, वो आरोपंत है। यहाँ पे भगवान है, भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं, हर कदम पे हेल्प कर रहे हैं। हम जितनी साधना कर रहे हैं उससे करोड़ों गुना भगवान रिवॉर्ड दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितनी भक्ति कर रहे हो उतनी रिवॉर्ड दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जितनी भक्ति कर रहे हैं उसे 10 गुना आधा भगवान हमें उसका फल दे रहे हैं। और भगवान आपकी जो भक्ति में जो बेस्ट मोमेंट्स हैं उसको देख के आपको रिवॉर्ड देंगे, जो वर्स्ट मोमेंट्स को देख के रिवॉर्ड नहीं देते। इसलिए भगवान को ऑल मर्सीफुल कहते हैं। हिंदी में कैसे कहेंगे इसको? जो भक्ति में आप जब क्या कहेंगे इसको, बेस्ट मोमेंट्स को?
बेस्ट
हाँ, जब भक्ति आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी ना, वो देख के आपको पे कृपा करेंगे। जब गंदी चल रही होगी तो वो देख के कृपा नहीं करेंगे, वो देखेंगे ही नहीं वो भगवान। सो भगवान इतने, इसलिए भगवान को परम दयालु कहते हैं। नहीं, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू एनकरेज, जैसे माता पिता अपने बच्चों को एनकरेज करते नहीं करते, वो हमेशा हमें एनकरेज करना चाहते हैं। सो ये रेस्ट एश्योर्ड है कि हम जितनी भक्ति कर रहे हैं उससे करोड़ों गुना का भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं। मगर ऐसा लगता नहीं है। हम अगर यहाँ पे 10 माला करेंगे तो भभगवान हमें फल 100 माला का देंगे। अब 11 करोगे तो अब 200 माला का देंगे। सो तभी तो यहाँ पे बैठे हम, वरना तो यहाँ पे बैठे भी नहीं होते। हमारी माला देखिए कैसे होती है। चौपट है हमारी सबकी माला, तो मन ही नहीं लगता। यहाँ पे भक्तों का संग मिल रहा है, मतलब श्रीमद भागवतम क्या कह रही है, नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिशु अपि महामुने। भागवतम कह रहे हैं कि नारायण परायण जो भक्त है, जो कृष्ण के भक्त है, उनका संग मिलना तो करोड़ों जन्मों में शायद संग मिलता है उनका, और यहाँ पे हमें रोज मिल रहे हैं एटलीस्ट कौन में। तो ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब किसकी भक्ति का फल है, आपकी आपकी हमारी, ऐसा इट्स इम्पॉसिबल, हमारी भक्ति उस लेवल पे ही नहीं है। तो इसके एक्सप्लेनेशन क्या, एक्सप्लेनेशन एक ही हो सकती है कि भगवान जो सिद्ध जो भक्त है, जो प्रेम के स्तर पे फल मिलता है, वो ही फल भगवान साधना के स्तर पे भी दे देते हैं अपनी कृपा से। इसलिए श्रीमद् भागवतम लिखी गई है, श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया जा रहा है। व्यासदेव ने भागवतम इसलिए लिखी है कि जो जो अनुभव आपको प्रेम के लेवल पे होगा, वो ही अनुभव आपको साधना के लेवल पे हो सकता है भागवतम पढ़ के। भागवतम डिजाइन ही व्यासदेव ने ऐसे की है, क्योंकि वरना तो भाई आप कैसे अनुभव करोगे प्रेम। ओके, व्यासदेव ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं ऐसी बुक बनाता हूं कि साधक भी परमहंस स्थिति पे जो अनुभव कर रहे हैं प्रेम, उसकी झलक अनुभव कर सकते हैं आप। रस आस्वादन लिखा है नहीं, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद पे आपको स्वाद का अनुभव होगा। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को, इनको संसार में स्वाद आ रहा है, उसको भगवान की लीलाएं सुनने में स्वाद आएगा। तो अगर आप भागवतम पढ़ रहे हो, आपको टेस्ट आ रहा है ना भागवतम पढ़ने में, तो ये मत सोचना कि आपका अपना टेस्ट है, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सो वल्लभाचार्य भी लिख रहे हैं कि एक्चुअली वो तो व्यासादेव ने डिजाइन ही ऐसी की है भागवतम कि अगर एक गधा भी पढ़ लेगा उसको भी टेस्ट आ जाएगा, बनाई किताब ऐसे है नहीं। सो दैट्स ऑल मर्सी ऑफ गॉड, व्यासादेव तो भगवान के स्वरूप है, ये भगवान की कृपा है। तो भक्ति रास्ते में बहुत अच्छा है, भक्ति रास्ते में भगवान की कृपा पे जीव निर्भर रहता है, अपनी साधना पे इतने निर्भर नहीं है। इसलिए अगर आप, इसलिए भक्त हमेशा भगवान की कृपा की महानता गाता है नहीं। कल भी हम बात कर रहे थे हरिदीश्वर, भगवान की कृपा के बारे में समझना चाहिए। सो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं अपनी साधना के बल पे नहीं, एक्चुअली कृपा के बल पे बढ़ रहे हैं। सो जो इसलिए शास्त्र में लिखा है ना कि भक्ति में बल क्या है, भक्ति में बल है कृपा, भक्ति में बल साधना नहीं है, आपका अपना बल नहीं है। नैम आत्मा बल ही न लभ्य हो, भक्ति में बल है बलराम जी, ऐसा भी कहा जाता है। और बलराम जी मतलब कृपा, ही हेल्प्स। बलराम जी का फंक्शन है कि बल, कृष्ण बलराम नहीं है साथ में, तो कृष्ण का फंक्शन है कि जो प्रेम मिल गया उसको कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, अम सिद्धो भक्ति अमृतो भक्ति तृप्तो भक्ति सब देते। और बलराम जी का फंक्शन है कि जो जिनको प्रेम नहीं मिला, जो भी साधक है उनको भी दे देते हैं बलराम जी, चलो अभी तुम भी ले लो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एनीवे, यत प्राप्य न किंचित वांछति। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई प्रेम के स्तर पे पहुंच जाएगा, किसी को भक्ति प्राप्त हो गई या भक्ति थोड़ी बहुत मिल रही है, साधना भक्ति करके थोड़ी बहुत झलक भी आ रही है भक्ति की, जैसे जब कोहरा होता है तो धीरे धीरे कोहरा हटता है और सूर्य की रोशनी दिखाई देने लगती है, हो सकता है पूरी दिखाई ना दे मगर दिखाई देती है जब, तो क्या होता है, यत प्राप्य न किंचित वांछति, कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी, इस संसार में प्राप्त करने की इच्छा खत्म होने लगेगी। जैसे जैसे प्रेम के नजदीक पहुंचेंगे हम, ऐसे ऐसे संसार से दूर होते रहेंगे, संसार की विस्मृति होती रहेगी। न शोचती, कोई शोक नहीं होगा, शो एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं होगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, आपकी टेंशन्स खत्म होने लगेगी। माइंड की जो हैबिट है शोचती कांक्षती, कुछ सोचने की, कुछ पाने की और रोने धोने की, माइंड की आदत है ना, रोता रहता है, कुछ खो गया रोता रहेगा, हाय ये हो जाता वो हो जाता, हमारा ऐसा हो गया ऐसा हो गया, इस सबसे आप ऊपर उठ जाओगे अगर भक्ति के निकट पहुँच गए। रूपा गोस्वामी एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जब रात होती है तो फिर हमें डर लगता है नहीं, कि हाय अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कोई चोर तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण आती है सारा डर छूमंतर, नहीं एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ सुबह हो गई। सो ऐसे जैसे ही भक्ति का थोड़ी सी झलक आती है सारा भय खत्म हो जाता है। अब क्या होगा, आगे क्या हो गया, चिंताएं खत्म, आकांक्षाएं खत्म, सब कुछ खत्म। न द्वेष्टि, द्वेष नष्ट हो जाता है। सो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं उसके लक्षण बता रहे हैं नारद मुनि। न द्वेष्टि, द्वेष खत्म। द्वेष खत्म होने का मतलब क्या है, किसी को पता है? वो तो ईर्ष्या तो मुझे पता है द्वेष होता है, बट द्वेष का मतलब होता है कि 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 मैं और मेरा, ये वो है और ये मैं हूँ, जो द्वैत भाव है खत्म हो जाएगा, इसी से द्वेष होता है, होता है वो खत्म हो गया। आप एब्सोल्यूटली कन्विंस हो जाओगे सब भगवान के अंश हैं, वो भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, और ये मैं मेरे जो आदत है ना, ये खत्म हो जाएगी, इसको द्वेष कहते हैं। फिनिश, मैं मेरा खत्म, मतलब आप ये शरीर मेरा है, फिनिश कॉन्सेप्ट, ये शरीर उसका है भी फिनिश्ड, ये सब किसका है, भगवान का, तो द्वेष खत्म होगा, अदरवाइज द्वेष खत्म नहीं हो सकता। न रमते, और सुख होना खत्म हो जाएगा इस संसार में, आप उदासीन हो जाओगे संसार के प्रति। उदासीन मत समझते हो, ये जो श्रीमद् भागवत में जड़ भरत के उपाख्यान में आता है, जड़ भरत उदासीन वत्ते, इंजॉयमेंट आना खत्म हो जाएगा, सुख आना खत्म हो जाएगा। एक्चुअली कूर्म पुराण में लिखा है, मैं पढ़ रहा था श्लोक, कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हूं, दुखी हूं, पतला हूं, मोटा हूं, वो अहंकारी व्यक्ति है, उसको अहंकार कहते हैं। सो वहां पे वो लिख रहे हैं कमेंट्री में कि एक एक आत्म अनुभवी व्यक्ति, उसको ना इस, उसको ना दुख स्थिति में दुख होता जाता है, ना सुखी स्थिति में सुख होता है। एक्चुअली रमते मतलब रिजॉइस, सुख तो होता है थोड़ा बहुत, ऑफ कोर्स आप एसी में बैठोगे अच्छा तो लगेगा, बट तुच्छ, तुच्छ समझते हो, संसार के वर्ड तुच्छ तुच्छ लगने लगेंगे, संसार के जो सुख हैं दुख हैं तुच्छ हो जाएंगे, इंजॉयमेंट नहीं है, उदासीन हो जाओगे आप। न उत्साही भवती, और इस संसार में कुछ काम करने के लिए उत्साह उत्साह नहीं रहेगा, ठीक है, बिजनेस ठीक है चल रहा है, जॉब ठीक है चल रही है, कैरियर ठीक है। सो प्रभुपाद यहाँ पे वो कोट कर रहे हैं रूपा गोस्वामी का, अत्यहार अप्रयासश्च प्रचल पोनियम आग्रश्च, इसकी छह चीज़ें भक्ति डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वही नारद मुनि बात कर रहे हैं। सो ये सिम्टम्स हैं, अगर ये सिम्टम्स आप में आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये लक्षण नहीं आ रहे तो इसका मतलब भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ रहे। अगर अभी भी हम अगर प्राप्त करने की इच्छा है और शोक में है, द्वेष, उत्साह कुछ करने का संसार में है, यू नो रॉन्ग ट्रैक, भक्ति सही से हम भक्ति सही से नहीं कर रहे। माइंड, एक भक्त का मन, एक भक्त का मन जड़ भरत जैसा हो जाता है, जड़ हो जाता है, इस संसार के लिए तो जड़ हो गया, ठीक है, भगवान के लिए की सेवा के लिए उत्साही है, मगर इस संसार के लिए जड़ हो गया, फिनिश। वो क्या मतलब, अगर आपके पास पत्थर पड़ा हो तो उसके बारे में कुछ सोचते हो? ना सोचते ना नहीं सोचते, दोनों ही चीज़ है, नहीं ऐसा भी नहीं हम सोच रहे हैं पत्थर के बारे में, ऐसा भी नहीं हम कह रहे हैं हम नहीं सोचेंगे। सो संसार ऐसे ही हो गया, आप ना इस संसार को हेट करोगे ना इसको चाहोगे, न द्वेष्टि न वांछति, न्यूट्रल हो जाओगे, उदासीन हो जाओगे, ठीक है तो है, हु केयर्स एक्चुअली, ये हो जाएगा। ज्ञानी इस संसार से द्वेष करते हैं, बेकार है, भोगी इस संसार को चाहते हैं, भगवान का सेवक डजंट केयर, जो है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो भक्ति से इस तरह भगवान में एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जैसे जैसे भगवान में एब्जॉर्प्शन होगी ऐसे ऐसे संसार के प्रति हम न्यूट्रल हो जाओगे। जैसे तुकाराम सुना है, मतलब आप उनकी लाइफ पढ़ो क्या है, ही डिडंट केयर, कोई इनको अपमान कर रहा है ठीक है चलो चलता है, घर से सामान ले गया, ले जाओ, सामान रख गया, रख दो। तुकाराम ने अपने पोयम अभंगों में लिखा है कि अगर कोई मुझे सूखी रोटी देता है ठीक है, अगर कोई मुझे बासमती राइस देता है घी के साथ तो भी ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ओ ये तो बेकार है, ही डिडंट केयर एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में। उनके माइंड में तो केवल एक ही विचार था कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है, ये ले लो, वो ले दो, ये दे दो, वो दे दो, डजंट मैटर, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, बस वही थॉट में माइंड अब्सॉर्ब्ड है। सो यद ज्ञात्वा मत्तो भवति, आ गया नहीं, भक्ति प्राप्त करके मत हो जाता है व्यक्ति, मत समझते हो ना, अपन लिख रहे हैं इंटॉक्सिकेटेड इन डिस्चार्ज। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं एक्चुअली मत का मतलब, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति में जब आगे बढ़ेंगे तो प्रभुपाद एक्चुअली अपने प्रॉपर्ट में लिख रहे हैं गीता में कि मत होने का मतलब कि सेवा में उत्साहित हो जाता है, सेवा में एंग्रोस्ड हो जाता है, उसको और कोई दिखाई नहीं देता सेवा के सिवाय। मत स्तब्धो भवती कह रही है, तो भाव के लक्षण है, कभी कभी स्तब्ध हो जाता है। और आत्मारामो भवती, आत्माराम मतलब अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में रमन करने वाला या भगवान के साथ रमन करने वाला। धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठ गया, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो अब नारद मुनि भक्ति के प्रभाव बता के एक दूसरा टर्न ले रहे हैं, और नारद मुनि कह रहे हैं ठीक है, अगर आपको ऐसी भक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, आपको यहाँ तक पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा। तो नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं स न कामे माना निरोध रूपत्वात्। सो कह रहे हैं कि ठीक है, भक्ति आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऑर्डनरी है, नहीं भगवान उनके भक्त उनका कीर्तन कर रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि कोई डिसीव भी कर सकता है, नहीं ठीक है, मेरे को तो अपना स्वरूप सिद्धि हो गई है, मैं तो परम शांत हूँ, और ये सारे लक्षण भी कोई कह सकता है ठीक है, न शोषति न द्वेष्टि, देखो मेरा मन तो शांत हो गया है, मैं तो शोक नहीं करता, मुझे टेंशन नहीं है, द्वेष नहीं है, सब कुछ हो सकता है, नहीं हमारा माइंड हमें डिसीव कर सकता है, नहीं कर सकता है। अभी तो चलो आपका हो गया ठीक है, अभी तो हम कह सकते हैं हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे में लक्षण आ रहे हैं, देखो हमारा मन कितना शांत है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा लगता ही नहीं लगता है। मगर जब समय आएगा तो आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत दूर नजर आओगे अपने आप को, समय आने पे पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता ऐसे बैठे बैठे। सो कई डिवोटीज मतलब ऑफकोर्स जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो घबरा जाते हैं, ऐसे तो कोई कुछ भी बोल सकता है। सो नारद मुनि कह रहे हैं अगर रियली में आपको पता लगाना है कि भक्ति में कहाँ हो तो एक टेस्ट है, न काम में माना निरोध रूपत्वात्, भक्ति में काम वासना का कोई प्रश्न है ही नहीं। अगर निरोध रूपत्वात, अगर मन में संसार के लिए इच्छाएं हैं और वासना है तो इसका मतलब है जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में भक्ति कम है, बस उसी से पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। नहीं मतलब आप देखो किसे क्या कहते हैं, तो अभी तो हम कह सकते हैं कि तो ऐसे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे तो आप खेलते नहीं, खेलते तो खेल खेल में कहते हैं कि ठीक है अगर सांप आ गया तो उसकी पूंछ पकड़ के घुमा दियो और फेंक दियो, बच्चे फिर वो खेल खेल में भी करके, मगर असली में सांप आ गया तो कुछ नहीं होगा, भाग जाएंगे। जैसे हम बच्चों की तरह हैं कि ठीक है अब तो मेरा मन शांत हो गया है, अब तो प्रेम के बहुत पास पहुंच गए हैं, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो कितना रस आ रहा है भगवान में, ठीक चल रहा है, मगर एक्चुअली जब असली सिचुएशन आएगी तो कुछ भी नहीं होगा, तो हमें समझ आएगा भैया हम तो कितने पानी में। इसलिए भगवान कभी कभी जानबूझ के हमें ऐसी सिचुएशन में रखते भी हैं, क्योंकि आप पूछोगे भी भक्तों को दुख क्यों आते हैं, अगर हम भक्ति सिंसियरली करें तो दुख क्यों है, उसका एक कारण हो सकता है कि आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपके कर्मों के ऐसे दुख आ रहे हैं, मगर भक्ति में भक्तों के कर्म, क्लेश अग्नि शुभदा, रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति शुरू करते ही सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं डिवोटी के। जैसे एक चिंगारी से बहुत बड़े रुई का पहाड़, एक चिंगारी से भस्म हो जाएगा चाहे कितना ही बड़ा रुई का पहाड़ हो, उसी प्रकार भक्ति के एक चिंगारी से भी, जरूरी नहीं है सूर्य रूपी प्रेम हो, एक चिंगारी से भी सारे पाप नष्ट खत्म चल के राख हो जाएंगे। तो जब कर्म नहीं है तो दुख क्या है? दुख क्यों है, सुख क्यों है संसार में, नहीं हमें क्यों हो रहा है सब? तो उसकी एक्सप्लेनेशन है कि भगवान अपने भक्तों को दुख और सुख देते हैं। दुख क्यों देते हैं? दुख इसलिए देते हैं कि इसको पता लग जाए कि भक्ति में उसकी सिचुएशन क्या है, वरना वो इल्यूजन में रहेगा कि मैं भक्ति में आगे बढ़ गया हूँ। इसे जानबूझ के उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देंगे बीच बीच में, इसको पता लग जाए मैं कहाँ हूँ, और फिर उस सिचुएशन से वो आगे प्रैक्टिस कर सके। और सुख क्यों देते हैं? सुख क्यों देते हैं?
मुझे नहीं आएगा फिर सुख
इसलिए
जाएगी।
हाँ, क्योंकि दुखी देते रहेंगे तो भक्ति छोड़ देंगे हम। तो सुख इसलिए देते हैं कि एनकरेजमेंट मिलता रहे कि भक्ति हम करते रहे आगे, इस आशा में कि जब प्रेम मिलेगा तो परम सुख की प्राप्ति होगी। सो ये भगवान का सारा अरेंजमेंट होता है। भगवान ही जैसे एक कुम्हार घड़े को बनाता है धीरे धीरे, नहीं अपने हाथों से, उसी प्रकार भगवान अपने हाथों से भक्त की आत्मा को धीरे धीरे परफेक्शन की ओर ले जाते हैं। तो कुम्हार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, नहीं घूम रहा होता है ना, थोड़ा सा प्रेशर उधर उधर हुआ टूट जाएगा। कभी बनाया है आपने खड़ा? बना के देखो, अब से बनेगा नहीं। थोड़ा बनाया है पॉटरी की है, थोड़ा सा प्रेशर इधर उधर हुआ उसकी शेप ही बिल्कुल अलग हो जाएगी और टूट जाएगा, एक्चुअली टूट जाता है। मैंने भी ट्राई किया था, वो टूट जाएगा आपका, इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से कुम्हार बना देते हैं, वो ऐसा नहीं होता। सो भगवान कुम्हार की तरह ही है। ये विष्णु सहस्रनाम में नाम आ रहा है भगवान का, एग्जैक्ट नाम बोलिए, मैं कुम्हार की तरह भगवान बेस्ट शिल्पी है। इस संसार के शिल्पी तो मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, भगवान आत्मा से परमहंस बनाते हैं। ये विष्णु सहस्रनाम में लिखा है। हमारी आत्मा को अब बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा दुख ज्यादा हुआ वो भाग जाएगा भगवान से दूर, थोड़ा सा दुख सुख ज्यादा हुआ वो आसमान में उड़ जाएगा, सहजिया बन जाएगा। तो भगवान बिल्कुल एग्जैक्ट जीव की जो स्थिति है, जिस जितनी मानसिकता उसके अनुसार सुख दुख देके धीरे 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 उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। दैट्स कृष्णा, ही हेल्प्स। सो इसलिए भगवान हमें कभी कभी ऐसी सिचुएशन में रखेंगे जहाँ पे अट्रैक्शन है, एंटाइसमेंट है, जहाँ पे आपकी इच्छाएं बाहर आ जाएंगे, ऐसी सिचुएशन में रख देंगे जानबूझ के। और भगवान को पता है कि किस सिचुएशन में इसकी इच्छाएं बाहर आ जाएंगी, उनको पता भी है एग्जैक्टली। वे किसी को अगर खाना अच्छा लगता है अनकंट्रोल्ड खाने में, तो भगवान जानबूझ के उसके सामने सारे महाप्रसाद ले आएंगे, ऐसी सिचुएशन में रख देंगे। और किसी को गाड़ी से अट्रैक्शन है तो जानबूझ के उसके लाइफ में गाड़ी अरेंज कर देंगे, चलो भैया गाड़ी अरेंज हो गई। कृष्णा नोज इन हार्ट, नहीं हम भगवान को पता है हम किस चीज़ पे फिसल जाएंगे, उनको पता है। सो अभी तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं फिसल रहे, तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाएगा, चलो भाई देखो ये देखो। गीता में भगवान ने ऐसे ही किया नहीं अर्जुन के लिए? क्या किया? रथम स्थापे में अच्छे होता, यही तो है प्रभुपाद, यही तो लिख रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा भगवान मेरा रथ दोनों आर्मियों के बीच में रखो, रखा ना कि मैं देख सकूं कि आर्मीज क्या चल रही है। भगवान ने जानबूझ के रथ कहाँ लेगा? भीष्म पितामह के सामने, वहीं लेगा, वहीं भीष्म पितामह जा खड़े थे। अब भगवान ने सबसे पहले बोला अर्जुन को, अर्जुन ये देखो भीष्म पितामह तुम्हारे और द्रोणाचार्य। तो भगवान को पता था अर्जुन फिसल जाएगा, ये भीष्म पितामह को देख के फिसल जाएगा, चाहे और तो बात छोड़ दो क्योंकि ही वॉज वेरी अटैच, नहीं और अर्जुन फिसल गया। तो भगवान भी हम साधकों को बोलते हैं ये देखो रीश प्रभु फ्रूट्स, वो फिसल जाएंगे फ्रूट्स देख के, उनको पता है वीकनेस पता है ना, या आप लोगों की जो भी वीकनेस है मुझे नहीं पता, बट परमात्मा एग्जैक्टली नोस, और वो अरेंज कर देंगे आपको दिखाने के लिए कि अभी कितने वीक हुआ या कितने स्ट्रांग हो, बोथ वेज। स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छा है, वी को तो काम कर लो आगे, अपने आप को प्योर कर लो. सो इट्स ऑल कृष्णा सर. इसलिए भक्त की लाइफ में जो भी होता है वो भगवान ही कर रहे होते हैं. वो माया, माया अभी माया के कंट्रोल में नहीं है, हम भगवान के कंट्रोल में. नाउ ही विल मैन्युपुलेट आवर कर्मास. वो हमारे कर्मों को मैन्युपुलेट करके, दुख सुख मैन्युपुलेट करते हैं और चीज़ों को मैन्युपुलेट करके धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ ज्ञान भी देते हैं कि सिचुएशन में जब हम फिसल जाएंगे तो हमें भी पता लग जाएगा क्यों फिसले हैं, क्योंकि नॉलेज है ना. ऑर्डिनरी आदमी फिसल जाएगा उसको पता नहीं लगेगा, जाएगा हाय मैं डिप्रेस हो जाएगा, नहीं और मेरा फॉल डाउन हो गया, मैं डिप्रेस, देखो मैं सिचुएशन में आ गया, मेरा टेंशन हो गई, स्ट्रेस आ गया, मेरी तो भक्ति कुछ भी नहीं है. कहते मेरी भक्ति तो जीरो हो गई, जब टाइम आया तो मैं क्रोध पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया, लो कैसी भक्ति है. मगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए. भगवान ने हमें साधु संघ में ज्ञान भी दिया है कि इससे हम समझ जाएं, ओके फाइन, मैं फिसल गया यहाँ पर, तो मुझे करना क्या है अब, मुझे इसका मतलब है वीक हूँ, अब मुझे भक्ति और उत्साह से करना है. इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव कह रहे हैं, उद्धव अगर मेरा डिवोटी कभी फिसल भी जाए और कभी कुछ खराब भी कर दे तो उसको ग्लानी तो होनी चाहिए. ऐसी बात नहीं ग्लानी नहीं होनी चाहिए, मतलब हम कोई नॉनसेंस लोग नहीं है, ग्लानी नहीं होगी, बट डिप्रेस नहीं होना चाहिए उसको कभी भी, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इस रास्ते पे हम फिसलेंगे, एक्सपेक्टेड है. शूरस से धारा निशिता दुरत्यया, उपनिषद कह रही है कि भक्ति का रास्ता तलवार पे धार की तरफ चलने के समान है. तलवार की धार पे चलोगे तो पैर तो कटेगा, परफेक्ट नहीं है ना अभी हम, मगर आपको पता है वॉर्म नहीं होता जो अर्थ पॉम्प, अगर उसको तलवार के धार पे रखो ना वो सीधा निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको, आराम से फिसल के चला जाएगा. सो हमें फिसलना नहीं आता ना, तो हम हमारे पैर वैर कट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके. सो भगवान कृष्ण उद्धव को एडवाइस कर रहे हैं कि मेरे भक्त को, क्योंकि भगवान ही अरेंज कर रहे हैं सब, तो भगवान ही अरेंज कर रहे हैं ना ये सब सर्कमस्टांसेस, फॉल डाउन क्यों कर रहे हैं. भक्त को नॉलेज है कि कृष्ण ने मेरी लाइफ में अरेंज किया मुझे दिखाने के लिए मैं कहा हूं, इसलिए उसको फॉल डाउन में भी मर्सी नजर आती है. ये एक डिफरेंट आइडिया, वो डिप्रेस नहीं होता. डिप्रेस तो है, चलो मैं वीक हूं, मगर उसको उत्साह भी है, चलो भगवान ने मुझे दिखा दिया कि मैं कहा हूं. अगर आपको दिखाता ही नहीं भगवान तो सोचो क्या होता, मृत्यु के समय पता लगता कि आपकी भक्ति क्या, जीरो, तो टाइम ही नहीं है, नो टाइम, यू आर डेड, फिर तो आप जहां जा रहे हो वहां जा रहे हो. सो इसलिए भक्त हर स्थिति में भगवान की कृपा को देख पाते हैं और इस कृपा से भगवान का मैसेज समझ के अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेते हैं, इसलिए कभी डिप्रेस नहीं होता. दैट्स अ डिवोटी. और इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं, स न कामे माना निरोध रूपत्वात् निरोधस्तु लोक अवेद व्यापार न्यास. और रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि सो भक्ति का मेन लक्षण क्या है, वैराग्य. काम वासना नहीं होना मतलब वैराग्य, वैराग्य से पता, काम इच्छाएं नहीं होना. और जब इच्छाएं नहीं होंगी तो इच्छाएं नहीं होने का मतलब क्या है, आप कहोगे भी हमें कैसे पता लगेगा हमारे में इच्छाएं नहीं है, अभी कैसे पता लगेगा इच्छाएं नहीं है. सो यहाँ पे नारद मुनि लिख रहे हैं, लोक अवेद व्यापार न्यास, कि संसार के जितने भी लोक के जितने भी व्यापार हैं और वेदों में जितनी भी क्रियाएं हैं, यज्ञ दान तप, इन सब में भक्तों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कम होता जाएगा. या दूसरे शब्दों में कहने का मतलब है, इस लोक का व्यापार क्या है, इस लोक का व्यापार है मान सम्मान, यही है ना लोक का व्यापार, मेन तो यही नींव है. हम जो भी चीज़ कर रहे हैं सोसाइटी में इसी के लिए तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं. मान के लिए तो हमने फ्लैट लिया मिलन विहार में, वरना पॉइंट क्या है. आप एक सिंपल दो 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 कमरे या फ्लैट में ले सकते हो, मगर नहीं कैसे रहोगे आप, लोग परेशान ही कर देंगे बोल बोल के. सो सब मान सम्मान पे ही बेस्ड है सोशल लेवल पे ना. सो नारद मुनि कह रहे हैं कि आप इस मान सम्मान से ऊपर उड़ जाओगे, जिस आपको फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से. और वेद व्यापार, वेदों में जितनी भी सारी व्रत तपस्या यज्ञ दान नो इंटरेस्ट, खत्म. सिर्फ एक ही फोकस रहेगा, न्यासा. न्यासा मतलब पता है क्या होता है? न्यास मतलब होता है सरेंडर, संन्यास. सत के सत को शरण ले लेना, संन्यास. एक ही काम रहेगा, न्यास. न्यास मतलब आपके जीवन में एक ही लक्ष्य रहेगा कि भगवान की शरण कैसे लो. ये थॉट बाकी थॉट्स को ओवरपावर कर जाएगा. ओवरपावर समझते हो? ये विचार बाकी विचारों को पीछे छोड़ देगा. जैसे पागल नहीं आते लोग, जैसे जैसे बिजनेसमैन पागल नहीं होता पैसों के पीछे, आए पैसे कैसे मिले पैसे, फिर अपनी फैमिली के बारे में ध्यान नहीं करता. होते नहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो बड़े जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी वाइफ कहती है तूने तो भाई अपनी कंपनी से शादी कर ली, मैं तेरी वाइफ हूँ, कंपनी तेरी वाइफ है. नहीं, इतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब होता है उस चीज में. सो वो चीजें फिर होती हैं, मगर दे डोंट केयर अबाउट दैट. ऐसे डिवोटी जाता है, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है. क्यों? क्योंकि उसे भगवान की कृपा का अनुभव होने लग रहा है. और थोड़ा सा जैसे जैसे ऐसे अनुभव होता है, उसके हृदय में लालसा आती है. अगर थोड़ी सी कृपा से इतना हो रहा है तो पूरी कृपा मिल जाएगी तो क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा कि देन द मैजिक बिगिंस. तो थोड़ी सी कृपा से जो हमारी लाइफ में चल रहा है, अभी चैंटिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भक्ति करके जो भी कृपा मिल रही है, उससे हम इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं, इतने शांत हैं, सुखी हैं, इतनी प्रॉब्लम से बचे हुए हैं संसार की. और मतलब भक्तों की लाइफ एक्चुअली एक बहुत ही क्या कहते हैं, प्रिविलेज लाइफ है. प्रिविलेज लाइफ समझते हो? कैसे कहेंगे प्रिविलेज? प्रिविलेज को हिंदी में कहते हैं नहीं, खुश नसीब कह सकते हैं. प्रिविलेज मतलब एक बहुत ही हिंदी नहीं आ रहा मुझे. प्रिविलेज लाइफ जैसे जैसे आपकी जो शाही लाइफ कह लो, जो मंत्रियों की लाइफ प्रिविलेज होती है ना, थोड़ा सा उसके आसपास है. पता नहीं यार, हिंदी देख रही है कि बता देना प्रिविलेज का मतलब. प्रिविलेज मतलब किसी को एक्स्ट्रा हाँ स्पेशल वो मिल रहा है उसको, जो भी हाँ स्पेशल सुविधाएं मिल रही हैं, प्रिविलेज उसको कहते हैं. भक्ति की लाइफ प्रिविलेज लाइफ है, स्पेशल सुविधाएं मिल रही हैं हमें जो ऑर्डिनरी आदमी को नहीं मिल रही. भक्तों का संग मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, शांति मिल रही है इतनी ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन में, जो भी मिल रही है थोड़ी बहुत सुख मिल रहा है, कितना कुछ मिल रहा है. नहीं, भगवान भगवान ही मिल रहे हैं लोग. सो बाकी सब कुछ मिल रहा है. भगवद्गीता में कृष्णा क्या कह रहे हैं, वो क्या श्लोक है 8 चैप्टर का लास्ट वर्स, वेदेशु योगेशु तपसु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम करोति अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा. तो कृष्णा कह रहे हैं कि हमें सब कुछ मिल रहा है, यज्ञ का फल भी मिल रहा है, दान का फल भी मिल रहा है, तपस्या का फल भी मिल रहा है. अपने आप तपस्या हो रही है भक्ति करने से, वो भी सुखपूर्वक. जल्दी उठ रहे हैं, क्लीन रह रहे हैं, नहीं सब कुछ तो मिल रहा है. प्रिविलेज लाइफ है. और कि भक्त भक्त को ये समझ आने लगता है प्रिविलेज लाइफ है, तो भक्त इस कृपा को देखकर फिर उसके माइंड में पूरा फोकस हो जाता है. जब इतनी सी भक्ति से इतना कुछ मिल रहा है तो प्रेम मिल जाएगा तो क्या होगा, फिर वो स्टॉप नहीं होता. फिर इसलिए भक्ति प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए कृपा का. और ये हैबिट होनी चाहिए कि हर सिचुएशन में भगवान की कृपा हम अनुभव, हर सिचुएशन में. तो आपका फॉल डाउन हो गया, उसमें भी आपको कृपा दिखाई दे रही है भगवान की. अफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि मैं फॉल डाउन होता रहूं, क्योंकि भगवान की बहुत कृपा है. वो एक डिफरेंट सेंस में दिखाई दे रही है. नहीं, अगर आप अंधेरा देख रहे हो तो उसमें भी रोशनी दिखाई दे रही है. कैसे कैसे दिखाई देगी? भाई क्योंकि अंधेरा देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? अंधेरा मतलब क्या होता है? रोशनी का नहीं होना. सो एक बेवकूफ अंधेरा देखता है, एक इंटेलिजेंट सोचता है यार ये अंधेरा तो इसलिए क्योंकि रोशनी नहीं है. वो रोशनी के बारे में सोच रहा है, अंधेरा देख रहा है सोच रहा है किसके बारे में? रोशनी के बारे में. मूर्ख अंधेरा देख रहा है, अंधेरे के बारे में सोच रहा है. यू सी दैट्स द डिफरेंस. तो जब डिवोटी के साथ, जब डिवोटी कभी वीक पड़ जाता है तो मूर्ख सोचता है हाँ मैं वीक पड़ गया, हाँ मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, अब क्या होगा. मगर इंटेलिजेंट क्या सोचता है कि मैं वीक और मूर्ख डिप्रेस प्रॉब्लम क्यों हुआ है, क्योंकि कृष्ण का सपोर्ट मैंने छोड़ दिया, वो रोशनी के बारे में सोच रहा है. इसलिए एक इंटेलिजेंट डिवोटी, मैंने भगवान की कृपा का सपोर्ट छोड़ दिया, इसलिए मेरी हालत हो गई, तो जल्दी से दोबारा पकड़ लो. एक मूर्ख वहीं पे खोल के हो जाएगा. सो एक डिवोटी को हर सिचुएशन में कृपा देखनी आती है, और इसलिए वो इस संसार के लोक और वेद व्यापार के से उदासीन हो जाता है. दैट्स ओके. वो हर जगह पैसे देख रहा है, बिजनेसमैन जहाँ देख रहा है उसको पैसे दिखाई दे रहे हैं, वो एब्जॉर्ब्ड हो गया. तो इसको बोलते हैं डिवोटी माया को देखते हैं तब भी उसको कृपा नजर आती है, वो कृपा के बारे में सोच रहा होता है माया को देखकर. नहीं, वो माया के वो देखकर माया के बारे में नहीं सोच रहा होता. ये एक डिवोटी, ये ट्रेनिंग है. अगर आप भगवद्गीता शास्त्र पढ़ोगे तो आपको ये ट्रेनिंग हो जाएगी. क्योंकि जो नॉन डिवोटीज हैं वो माया में है, और डिवोटी क्या सोचता है उनको देखकर. डिवोटी सोचता है क्योंकि वो भगवान की कृपा से अलग है इसलिए माया में पड़ गए. कितने बेवकूफ है, अगर भगवान की कृपा के अधीन हो जाएंगे तो माया छूमंतर हो जाएगी. दैट्स ऑल. या डिवोटी ये भी सोच सकता है कि वो माया में है, भगवान ने उनको माया में इसलिए रखा है कि जिससे माया में रहकर उनको दुख मिलेगा, और दुख मिलेगा तो वो क्या करेंगे, फिर भगवान की तरफ भागेंगे, हे राम हे कृष्णा. सो अल्टीमेटली ये सारा माया भी भगवान ने इसलिए बनाई है कि जिससे वो भगवान की कृपा को अनुभव कर पाए. पनिशमेंट दी इसलिए जाती है कि इससे वो समझ पाए कि अच्छी लाइफ क्या है, बुरी लाइफ क्या है नी. सो एक इंटेलिजेंट आदमी समझ जाएगा. सो हर चीज कृपा से कनेक्ट कर देगा डिवोटी, बस खत्म हो गया, उदासीन हो गया संसार के प्रति. दैट्स ऑल. उसका अपमान हुआ तब भी उसको कृपा नजर आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, तो उदासीन हो गया ना संसार के अपमान में. ठीक है, बहुत अच्छा भगवान की कृपा है, ये मुझे दिखा रहे हैं भगवान कि मैं इसी लायक हूँ. अच्छा है मेरा अपमान हो रहा है कि मुझे अहंकार नहीं आएगा. भगवान की कितनी कृपा है, वरना मैं तो अहंकार ही बन जाऊँगा नहीं. सो अपमान करने वाले का तो वो धन्यवाद करता है एक डिवोटी, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे गाली दी, एक और दे दो यार, ये मैं तो भूल जाता हूँ, मेरे तो सब प्रेस करते हैं, तुम ही मेरे रियल फ्रेंड हो. नहीं, उस डिवोटी के लिए तो वही रियल फ्रेंड है. और जब मान होता है तब भी वो कृपा देख रहा है कि डिवोटी क्या सोच रहा है. जब आपका मान होता है तो डिवोटी क्या सोच रहा है, क्या सोचता है डिवोटी, क्या देख रहा है उसके पीछे कृपा. जब मान हो रहा है तो सोच रहा है कि भगवान मुझे इस पोजीशन में लिया है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग मेरे उस गधे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं. भगवान से, भगवान की कनेक्शन की वजह से मेरा मान हो रहा है, अदरवाइज मेरी क्या वैल्यू है. तो दोनों में भगवान की कृपा देख ली उसने. सो ये एक्चुअली ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. ये ट्रेनिंग नॉलेज से आती है. फिर अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं पता लगेगा आप फिर आप नहीं देख पाओगे. और जैसे ही कृपा ओझल हुई मन से, आंखों के सामने से, वैसी माया आ जाएगी. क्योंकि माया के दो मतलब है, एक कृपा और एक इल्यूजन. माया का दूसरा मतलब है कृपा. तो जैसे ही आपने माया को देखना बंद कर दिया, वैसी माया आपको पकड़ लेगी. माया कृपा के सेंस में आपको पकड़ लेगी. सो हरे कृष्ण. अन्य आश्रम जागरण रहना था. ओके, नारद मुनि यहाँ पर कुछ और कंटिन्यू कर रहे हैं. आई जस्ट फिनिश. कोई क्वेश्चन है किसी को पूछना है, कोई स्टॉप है ना, दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है. खैर आप सोचना इस पर मैंने क्या बोला आज ना, क्योंकि ये बहुत इज समथिंग डीप जो मैंने आज बोला है, वो प्रैक्टिस करने वाली बात है. इट्स नथिंग थ्योरेटिकल, इट्स समथिंग प्रैक्टिस. आप वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों जाए. अच्छा, बैठ जाए चेयर. हाँ ठीक है. अगर सही परिप्रेक्ष्य में ग्लानी हो रही है, स्पिरिचुअल सही में ज्ञानी हो रही है, ग्लानी हो रही है, तो उत्साह खत्म नहीं होगा। उस ग्लानी से उत्साह आएगा, स्पिरिचुअल ग्लानी से उत्साह आता है। और अगर ग्लानी मन से आ रही है, अगर आत्मा से आ रही है तो उत्साह आएगा, मन से आ रही है सोच साच के तो डिप्रेस हो जाओगे। इसका मतलब वो ग्लानी हमारे माइंड की उपज है, वो स्पिरिचुअल ग्लानी नहीं है, वो मेटेरियल ग्लानी है। वैसे ही हम सोच साच के, मतलब पॉइंट ये है कि स्पिरिचुअल ग्लानी मतलब जिस ग्लानी में आपको भगवान की कृपा नजर आ रही है उसमें उत्साह आ जाएगा। जिस ग्लानी में आपको कृपा नजर नहीं आ रही, आपको खुद ही नजर आ रहे हो मैं, उसमें डिप्रेस हो जाओगे। बस ये फर्क है। सो डिवोटी
किसी के साथ, चाहे
तो मतलब ट्रेन नहीं हो ना, लड़ाई में आप लड़ रहे हो, बॉक्सिंग हो रही है, एक घूसा लगा ट्रेंड हो, भूसा लगा आप उठ के दोबारा मार दोगे उसको, ट्रेंड हो ना। और मुझे लगता है क्या यार, तुझे बताऊंगा मैं, डबल उत्साह आ जाएगा। ट्रेंड नहीं है मतलब हमने किताबें सही से पढ़ी नहीं, हम ट्रेंड ही नहीं है भगवान की कृपा हर सिचुएशन में देखने में। तभी तो भगवान ने 10 चैप्टर बोला है गीता का, आई एम एवरीथिंग, नहीं पर्वत व्यू। भगवान हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं हर जगह उनको परसीव करने की। बस ये कृष्ण भूलिया जीव भगवान चा करे निकटस्थे माया तारे झपटिया तारे। जैसे ही भगवान को या भगवान को उनकी कृपा में देखेंगे नहीं, वैसे ही माया पकड़ लेगी आपको। माया का काम ही है डिप्रेशन लाना। माया सब कुछ कर सकती है, आपको उत्साह नहीं दे सकती भक्ति करने का, है नहीं? ये अगर उत्साह है भक्ति में तो डेफिनेटली कृपा है। माया ये नहीं करने देगी, बस बाकी सब कुछ कर देगी। माया ये भी कर देगी, डिवोटी में रिलेशनशिप अच्छा बना देगी, नहीं होता ही है, नहीं बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा, उसको लगेगा सब अच्छा चल रहा है, मगर एक्चुअली पूरी माया है। वो पूरी नॉर्मल फ्रेंडशिप चल रही है, डिवोशनल रिलेशनशिप नहीं होता ही है, नहीं मतलब ऑफ कोर्स होता ही है। आई मीन टू से इस्कॉन में तो उत्साह नहीं आएगा, हाँ बाकी सब कुछ चलता रहेगा। बाकी माया आपको बोल देगी प्रसाद बहुत अच्छा बनाया है, कितनी अच्छी कुकिंग कर रहे हो, कितनी अच्छी ऑफरिंग कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चलेगा। चैंटिंग का और भक्तों का संग करने का उत्साह नहीं आएगा, वो माया कभी नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है वो दे दिया तो छू मंत्र है, उनको नॉलेज मिल गई तो गएगा हमसे। बस ये प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। उस टाइम कुछ नहीं कर पाओगे आप, उस टाइम अगर डिप्रेस हो गए ना तो फिर बाहर नहीं निकल सकते, फिर तो किसी डिवोटी का जाके निकलना पड़ेगा। उससे पहले ट्रेन चाहिए, वरना नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं। पता क्या कहते हैं, रात गई बात गई नहीं, हाथ से बात, फिर तो दलदल में चले गया, फिर तो खिंचो गई, फिर देन देयर इज नो चांस। क्या कहते हैं,
आपने बताया कि डिवोटी सब कृपा का अनुभव करता है, परंतु कौन से क्षण से, कौन से मोमेंट से वो भगवान की कृपा समझने लगता है? क्योंकि कई बार ऐसे होती है कि कब मानेंगे वो व्यक्ति भगवान की कृपा से उस पर दुख आ रहे हैं। मूर्खता तो कई वजह से हम करते हैं, और हमारे को अपनी गलती की वजह
से, मैं समझ गया,
गलती की वजह से ही हम गड्ढे में गिर रहे हैं, तो हम अपने आप को ये कह रहे हैं भगवान की कृपा थी इसलिए हम गड्ढे में गिर
गए। हम ही थोड़े ना कह रहे हैं भगवान की कृपा थी गड्ढे में गिर गया, ये तो कंक्लूजन गलत है। तो हमने बेवकूफी की, हमारा फॉल डाउन हो गया, मगर डिवोटी ये सोचता है कि भगवान ने हमारा फॉल डाउन होने दिया, भगवान रोक भी सकते थे ना उसको, भाई आपको पत्थर लगा, गड्ढा आया, पैर फिसला, तो साइड वाला पकड़ भी सकता है आपको, मगर उसने आपको गिरने दिया। वो देख रहा है गड्ढा आ गया, कुछ किया ही नहीं, गिर गया। सो ही वॉज पावरफुल टू प्रोटेक्ट यू, बट ही डिडंट। सो डिवोटी सोचता है कि भगवान ने मुझे अलाउ ही क्यों किया फॉल डाउन करने को, कुछ रीजन है इसके पीछे, मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। तो तब उसको समझ आता है कि भगवान की कृपा है मुझे दिखाने के लिए कि मैं वीक हूं और मुझे स्ट्रांग बनना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। समझ गए नहीं समझ गए? तो वो डिफरेंस है,
कौन से एंगल से ऐसा महसूस करना शुरू करे व्यक्ति,
कौन से एंगल से, ये क्या होता है,
कौन से क्षण से
अभी से और कैसे,
जब उसको समझ आती है कि मैं गिर
गया। अभी से और कैसे,
समझना भी कृपा ही होती है, वरना लोगों को समझ भी नहीं आता कि मैं गिर गया।
जब उसको समझ आने लगी कि मेरा फॉल डाउन हो रहा है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, और उत्साह मिले और करने का भक्ति का, तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा है, उसको कृपा नजर आ रही है। अदरवाइज नहीं।
छोड़ देते हैं, गिरेगा तो सुधरेगा।
अच्छा अच्छा, ऐसे होता है ना। हाँ, बच्चे को चलने में भी होता है।
क्योंकि अब गिरेगा तो सुधरेगा नहीं ये।
भगवान से कृपा,
मगर इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से फॉल डाउन हुआ है। दैट्स अ वेरी बैड लॉजिक।
ये थॉट्स रहता है ना मोस्टली कई व्यक्तियों के, भाई
नहीं नहीं, एक इसका किसी का थॉट नहीं रहता।
फॉल डाउन तो अपने,
ये तो किसी का थॉट नहीं रहता।
और अगर आप उसको समझ जाओ तो फिर वो कृपा होती है।
हाँ,
समझ
हाँ, बस ये बात है।
कोई मान लो जब कर रहा है और वो अपनी गलती से फाइनेंशियली लॉस हो गया उसको, अब हम डिस्कशन दो व्यक्ति कर रहे हैं कि उस पर भगवान की कृपा है कि उसका फाइनेंशियली लॉस हुआ है, तो हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं उसके विषय में तो भगवान की कृपा है।
ओ भैया, भगवान की कृपा ही तो है, किसी किसी का लॉस हो गया सब, वही तो मैं कह रहा हूँ, सारे भोगियों पे अल्टीमेटली भगवान की कृपा है, क्योंकि इनको इनको सफर कर रहे हैं ना ये सब लोग, दुख मिल रहा है, दुख मिलना ही कृपा है, क्योंकि मगर इनको नजर नहीं आ रहा कृपा है, प्रॉब्लम ही है। अगर इनको नजर आ जाएगा कि भगवान ने दुख अरेंज ही इसलिए कि हमें समझ आ जाए कि भाई दुख तब तक है जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे, तो इनको थप्पड़ पर तो पा रही है मम्मी, कृपा ये मम्मी का थप्पड़, मगर इनको समझ नहीं आ रहा कि मम्मी ने थप्पड़ मारा है मेरी हेल्प के लिए। हाँ, ये उल्टा काम कर रहा है, नॉलेज नहीं है। सो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो कृपा है ही, बहुत बड़ी कृपा उस पर। सो यही तो डिवोटी है, वो उसको हर जीव पे भगवान की कृपा नजर आ रही है। ऑफ कोर्स, मगर वो कृपा अलग है, ये कृपा अलग है, वो भी बात है, अलग अलग टाइप की कृपा भी तो होती है। अब भक्ति में जो भगवान कृपा दे रहे हैं, जिससे हमें शांति सुख मिल रहे हैं, वो अलग है, उनको जो कृपा दे रहे हैं जो दुख मिल रहा है वो अलग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं, माँ का थप्पड़, माँ का प्रेम, दोनों ही कृपा है, मगर अलग अलग टाइप की कृपा है ना। हम थप्पड़ वाली कृपा नहीं चाहते, हम दूसरी कृपा चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट माइंड सेट चाहिए।
जो भगवान की कृपा है जो आपने बताया, शांति और तीन, ये पहले नाम जब से शुरू हो जाएगी या कुछ टाइम बाद आना शुरू होगा?
अभी से ही, रूपा को समय तो कह रहे हैं, भक्ति शुरू करते ही शार्ट चालू हो जाएगा, हो ही जाते। नहीं, प्रभुपाद अपने लेटर में लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नाम लेते ही आपको सुख और शांति का अनुभव होने लगेगा। हो, प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने लेटर में कि इसका प्रमाण क्या है कि जैसे कोई कीर्तन में आता है नाचना शुरू कर देते हैं। होता नहीं, एक भोगी से भोगी आदमी भी कीर्तन करके उसको अच्छा लगता है, लगता है नहीं लगता है, कहते हैं हाँ शांति मिली, चलो अच्छा लगा, कोई भी हो इमीडिएटली शुरू हो गया। हाँ, उतनी इंटेंसिटी में नहीं है,
इंटेंसिटी कैसे चेक
करेगा? पता नहीं है, चेक कैसे करेगा, आपको चेक क्यों करना है, खुद ही चेक कर लो, अपने पता लग जाएगा।
जैसे प्रभुपाद भगवद्गीता में कई जगह पे लिख रहे हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य आएगा प्रकाश अपने आप आ जाएगा, तो वैसे आपने इस तात्पर्य में पहले बताया कि पहले आत्म साक्षात्कार होगा फिर भक्ति में प्रवेश करेंगे,
असली असली भक्ति, परफेक्ट भक्ति, मगर अभी भी तो भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति, वो भक्ति प्रेम भक्ति की बात कर रहे हैं, साधना भक्ति की।
आजकल
ओ लो, इतनी सारी चीजें थी आज के लेक्चर में, तो जिस्ट क्या है यार, आप ही बताओ क्या समझे हो आप, एक पॉइंट बता दो, क्या आप लोग क्या कहते हो, क्या जिस्ट है क्या? वेल, एक जिस्ट तो है कि अगर प्रेम भक्ति तक पहुंचना है तो अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, और वो ट्रेनिंग क्या चाहिए कि हर सिचुएशन में हमें भगवान की कृपा को देखना है।
आज के लेक्चर के कंटेक्स्ट
में मेन वन ऑफ द मेन पॉइंट तो यही है,
जो एक क्लास में भी उसने कराया था कि जैसे अगर कील भी लग गई तो उसकी कृपा समझो मौत भी हो सकती थी, तो वो ही हो गया।
सो हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि हमार सिचुएशन में भगवान की मर्सी को देख पाए, वरना आगे नहीं बढ़ सकते, प्रेम तक नहीं पहुंचेंगे, पॉसिबल नहीं।
ये बात तो ऑलमोस्ट ऑल डिवोटीज दे हैव अंडरस्टूड, की
अंडरस्टूड नहीं है ना, अंडरस्टूड नहीं है। एक ही कहना कि भगवान की हर जगह हर टाइम कृपा है वो अलग बात है, और हर रियल सिचुएशन में उनकी कृपा को देखना कि कैसे है वो समझना बिल्कुल लगे। ऐसे भी बात हो रही थी, फॉल डाउन हो गया तो लोग तो सोचेंगे भगवान की कृपा से फॉल डाउन हुआ है, गलत कंक्लूजन। ऐसा नहीं है, हमारा फॉल डाउन हुआ है, कृपा ये है कि भगवान ने हमें फॉल डाउन होने दिया, बचाया नहीं, ये कृपा है। अब ये आदमी नहीं सोचेगा, वो तो सोचेगा बचाया नहीं, ये कैसी कृपा है, ये लो यार, देयर्स अ रॉन्ग कंक्लूजन ना। या तो वो सोचेगा कि भगवान की कृपा से फॉल डाउन हुआ है, या वो सोचेगा यार भगवान की कृपा बचाना, मगर वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी मूर्ता कैसे फॉल डाउन हुआ है, भगवान की कृपा उन्होंने मुझे बचाया नहीं और गिरने दिया। उसके लिए नॉलेज चाहिए, नहीं अदरवाइज। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे शास्त्र तो हर सिचुएशन में आपको भगवान की कृपा देखना आ जाएगी, वरना नहीं आएगी, वरना कन्फ्यूज रहेंगे, तभी तो नॉलेज है। ऐसे इतने सारे लोग हैं भोगी, तो ये कहेगा यार इन पर कृपा ही नहीं कृपा है, कहेंगे इन पर कौन सी कृपा है, भाड़ में जाए, हम पे कृपा, हम भक्त हैं। वेल कृपा सब पे है, उन पर भी कृपा है, बट वो थप्पड़ वाली कृपा है, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कृपा। सो यू सी इट्स अ डिफरेंट टेक। मगर तो आप कहोगे उन पर भी कृपा है, तो फिर ठीक है, फिर हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, सब पे कृपा है, यू सी कन्फ्यूजन है ना। तो मगर आपको बोलना पड़ेगा कि उन पर थप्पड़ वाली कृपा है, वो थप्पड़ थप्पड़ उन्होंने खाते रहोगे हमेशा, गाल सूझ जाएगा तुम्हारा और क्या होगा, वो कृपा थोड़ी ना चाहिए हमें। वो तो कृपा इसलिए है कि जिससे हम वो वाली कृपा छोड़ के ये वाली कृपा ले लें, इसलिए वो कृपा है। तो कभी कभी कृपा को देखना होता है और ये भी देखना होता है, इस कृपा को छोड़ के दूसरी कृपा लूँ। सो यू सी इट्स बिकम कॉम्प्लेक्स आफ्टर सम टाइम। सो वो तो नॉलेज से समझ आता है, वरना नहीं आता। ये अंडरस्टैंडिंग है, वो भागवतम में सब कुछ एक्सप्लेन है, प्रेयर्स में कैसे भगवान की कृपा को हर वक्त देखते हैं। तब माया छू मंत्र होगी, जहां आपने भगवान की कृपा को नहीं देखा वहीं माया एंटर कर जाएगी, बस वहीं पे फिर डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीजें आती रहेंगी। बस लॉस हो गया आपको लाइफ में, बैंक करप्ट हो गए, कितनी कृपा है भगवान की, कितना अच्छा है। नहीं हमारे फैमिली में डेथ हो गई मदर फादर की, वो कृष्णा कितने मर्सीफुल है, मगर उस टाइम सोच नहीं पाएंगे हम ऐसा। एक तो नॉलेज होती है, एक होते नॉलेज होते हुए भी आपका काम नहीं आएगी, ये भी तो है।
इसमें कैसी कृपा,
ये लो देख लो, अब क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया, ट्रेंड नहीं है। क्यों, मदर फादर मर गए, बहुत बड़ी कृपा है, कितना अच्छा हो गया। जिनके मदर फादर जिंदा उन पर तो कृपा है ही नहीं उतनी जितनी उन पर, जिनका मदर फादर चले गए, मगर आप सोच नहीं पाओगे, आप कहोगे होंगे क्या होगा मेरे साथ, ऐसे कैसे हो गया, नहीं, वो सारी नॉलेज फेल हो जाएगी। मगर है कृपा, आपकी सारी अटैचमेंट्स खत्म हो गई। अब एक ही दो ही लोग से तो अटैच्ड होते हैं सबसे ज्यादा, मदर फादर से, वाइफ से, हाँ ठीक है वाइफ से भी, तो ठीक है वाइफ 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 एक्सीडेंट हो गया मर गई, बहुत अच्छा, मगर कौन सोच सकता है ऐसे, कौन सोचेगा, डिवोटी सोच लेंगे। मतलब वो कौन थे, वो आपके जयदेव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी थे, कौन थे पता नहीं, कौन से डिवोटी थे, उनकी उनकी वाइफ की डेथ हो गई और उनका बच्चा पता नहीं, बच्चा भी मर गया, वो बहुत खुश होकर डांस कर रहे थे, आज मुझे चैन मिला, भगवान ने मेरी आखिरी आसक्ति भी छीन ली, आई एम सो हैप्पी। मगर ये कोई साधारण आदमी नहीं कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा हो गया ना, आप सबसे पहले कंटी वाला फेंकोगे, या भगवान ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, इतनी भक्ति की है, लो बस पता नहीं एक दो डिवोटी को भी शूट कर दो जाके, हमें तेरी में ऐसे भक्ति में
आया था, यही भक्ति में लेके आया था,
हाँ यही लेके आया था, गड़बड़ किया। सो दैट्स द पॉइंट इज, यू सी इट्स नॉट इजी टू सी मर्सी एवरीवेयर। सो ये कृपा है, मगर उस टाइम हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें ट्रेनिंग चाहिए पहले से, कि हर सेकंड। अच्छा वो थे एक्चुअली, ये थे रामदास, रामदास थे कौन थे, वो मोची नहीं था, वो जो मीराबाई के जो गुरु हैं,
रविदास
ना, उनके साथ ही ऐसा हुआ था, मोची थे ना, तो गड्ढे पे वो कर रहे थे पैर से मिट्टी को, तो उनका बच्चा नीचे आ गया, ऑफ कोर्स ही वाज अ मायावादी, दैट्स अनदर थिंग, वो एग्जांपल ठीक है। तो वो अपना राम राम बोल रहे थे, इतने इन्वॉल्व थे कि बच्चा रेंगते हुए आया, उसको पैर मार मार के उसको कुचल दिया, वो दिखाई नहीं दिया, गड्ढा था ना मिट्टी का, तो कुछ कर रहे होंगे, मिट्टी बना रहे होंगे पैरों से कर करके, तो राम राम बोल के इतने एंग्रॉस थे कि बच्चा क्रॉल करते आया उस मिट्टी में आ गया, उन्होंने उस पर पैर मार मार कर कुचल दिया. एंड देन ही सॉ लो मेरा बच्चा, मैंने ही इसको कुचल दिया. बट देन ही वॉज हैप्पी, उन्होंने कहा ठीक है चलो काम खत्म, एक आसक्ति थी खत्म हो गया, ठीक है अपना नॉर्मल चैंटिंग कर रहे हैं राम राम. ही सीइंग दैट, यू सी नाउ. सो दैट तो क्यों है, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो ट्रेंड है, उनको उनको पता है कि हर क्षण जीव की लाइफ में कृपा ही है. हम कन्विंस्ड हैं हर सेकंड भगवान का इंटरफेरेंस है, हर एक की लाइफ में परमात्मा का इंटरफेरेंस है. परमात्मा की कृपा के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते हम. ये जो हॉर्न बजा रहे हैं भगवान की कृपा से तो बजा रहे हैं, कुछ शक्ति कौन दे रहा है, टाटा ही नहीं कर पाएगा. जब एनर्जी नहीं होती तब पता लगता है भैया एनर्जी वहां ने खींच ली, अब क्या करूं पढ़ाओ. ऐसे अभी मेरी एनर्जी लेवल्स कम है, जब एनर्जी होती तो समझ नहीं आता, अपने घूम रहे होते हैं. जब कम होती है एनर्जी बुढ़ापे में, नहीं ओ भैया पहले मैं कितना करता था अब कहाँ चली गई, तब समझ आता है कृपा. सो वो उसे पहले ही समझ लो आप. सो दैट्स द आइडिया. सो अगर हर जगह कृपा देख रहे हो तो माया छूमंतर. माया का मतलब ही है जहां कृपा नहीं है. माया मतलब अंधेरा. अगर हर जगह रोशनी को देख रहे हो अंधेरा नहीं है, कहाँ है, खत्म हो गया. सो माया का मतलब ही होता है. सो दैट्स द ट्रेनिंग, बट वी नीड ट्रेनिंग फॉर दैट. ठीक है, नहीं ठीक है, समझ रहे, नहीं समझ रहे. वो रूपा गोस्वामी बता रहे हैं, वो देख लेना नेक्टर इंस्ट्रक्शन में. आई विल एक्सप्लेन दैट. ओके, सो हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय.